एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
हाँ, और ये नजरिया हमें मिला है केनेथ वॉल्स की क्लासिक किताब थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से,
मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत।
जी हाँ, और हमारे पास इस किताब के अंग्रेजी और गुजराती में कुछ अहम नोट्स और सारांश है, तो इन्हीं के आधार पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वॉल्ट्स का ये सिद्धांत क्या है
और क्यों इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सोच पर आप कह सकते हैं इतनी गहरी छाप छोड़ी है।
और देखिए, ये कोई पुरानी मतलब धूल खाती अकेडमिक थ्योरी भर नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
सही बात है। आज भी जब हम टीवी पर यूक्रेन युद्ध देखते हैं या अमेरिका चीन के तनाव के बारे में पढ़ते हैं या सोचते हैं कि क्यों पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते इतने मुश्किल बने रहते हैं, तो वॉल्ट्स के विचार हमें इन गुत्थियों को सुलझाने का एक अलग ही चश्मा देते हैं।
तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सोच की दुनिया में गोता लगाने के लिए जो शायद दुनिया देखने का आपका नजरिया बदल दे।
चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस नजरिए के पीछे के इंसान से, केनेथ वॉल्ट्स। 1924 में जन्मे, 2013 में उनका देहांत हुआ।
जी,
20वीं सदी के सबसे दिग्गज राजनीतिक वैज्ञानिकों में से एक। उन्हें नव यथार्थवाद यानी नियो रियलिज्म,
या जिसे संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं,
स्ट्रक्चरल रियलिज्म, हाँ, उसका जनक माना जाता है, फाउंडर एक तरह से।
और दिलचस्प बात यह भी है कि वो सिर्फ एक किताबी विद्वान नहीं थे, उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध और कोरिया युद्ध में हिस्सा लिया था।
बिल्कुल, शायद जमीनी हकीकत के उन अनुभवों ने ही उनके विचारों को इतना यथार्थवादी बनाया होगा।
मतलब दुनिया को बिना किसी लाग लपेट के देखने वाला।
हाँ, लगता तो है। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी जगहों पर पढ़ाया भी।
सही कहा। और उनके दृष्टिकोण की खासियत ये थी कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का फोकस ही बदल दिया। देखिए, पहले के कई विचारक थे जिन्हें शास्त्रीय यथार्थवादी कहते हैं।
हाँ, जैसे मोर्गेंथाउ।
हाँ, मोर्गेंथाउ वगैरह। वो मानते थे कि देशों के बीच संघर्ष की जड़ इंसान के स्वभाव में है या नेताओं की सत्ता की भूख में है। लेकिन वॉल्ट्स ने कहा नहीं, असली खिलाड़ी इंसान या देश नहीं है, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है जिसमें ये देश काम करते हैं।
हाँ, उन्होंने अपनी पहली बड़ी किताब थी मैन द स्टेट एंड वॉर, उसी में इशारा कर दिया था कि युद्ध के कारणों को तीन स्तरों पर देखो, व्यक्ति, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली।
और उनका जोर तीसरे स्तर पर था,
अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पर।
बिल्कुल। और ये किताब थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसी विचार को और मजबूती से रखती है। तो उन्होंने तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तुलना एक बाजार से की थी,
है ना?
जैसे देश कंपनियां हैं और बाजार के दबाव यानी सिस्टम की बनावट उनके बर्ताव को तय करते हैं।
तो क्या है इस किताब का केंद्रीय विचार, अगर बहुत सरल शब्दों में कहें तो?
देखिए, वॉल्ट्स का तर्क यह है कि देशों का बर्ताव कैसा होगा ये इस बात पर कम निर्भर करता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। मतलब वहां लोकतंत्र है या तानाशाही, उनकी संस्कृति क्या है या उनके नेता क्या चाहते हैं, ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
अच्छा, तो फिर महत्वपूर्ण क्या है?
ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच की बनावट कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है।
वॉल्स एक बड़ा सवाल उठाते हैं। सदियों से देशों के अंदरूनी सिस्टम बदलते रहे हैं, है ना? राजाओं के जमाने से लेकर आज लोकतंत्र तक।
हाँ, बदलते रहे हैं।
फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ चीजें क्यों नहीं बदलती? क्यों आज भी देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं? क्यों ताकत बढ़ाने की होड़ लगी रहती है? क्यों युद्ध होते रहते हैं?
उनका जवाब है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम की जो बुनियादी बनावट है वो ज्यादातर वैसी ही रहती है।
और इस बनावट की दो खास बातें हैं, है ना?
जी हाँ, पहली अराजकता,
एनार्की। अब इसका मतलब अफरा तफरी या मारकाट नहीं है जैसा लोग समझते हैं।
नहीं, तो फिर क्या है?
इसका सीधा सा मतलब है दुनिया में कोई बॉस नहीं है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट या ग्लोबल पुलिस नहीं है जो देशों को कंट्रोल कर सके। हर देश अपने आप में संप्रभु है, सॉवरेन है।
अच्छा, ठीक है। और दूसरी खास बात?
दूसरी खास बात है क्षमताओं का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। मतलब दुनिया की ताकत जैसे फौजी, आर्थिक वगैरह, वो देशों के बीच कैसे बटी हुई हैं।
हाँ, मतलब कोई एक सुपर पावर है या दो हैं या कई ताकतवर देश हैं।
बिल्कुल। वॉल्ट्स के मुताबिक सिस्टम की ये बनावट ही, मतलब अराजकता और ताकत का बंटवारा, यही देशों को एक खास तरह से बर्ताव करने पर मजबूर करती है।
और वो खास बर्ताव क्या है, मतलब किस तरह का बर्ताव? देखिए, क्योंकि कोई ऊपर बैठकर सुरक्षा की गारंटी देने वाला नहीं है, तो हर देश को अपनी मदद खुद करनी पड़ती है, अपनी सुरक्षा खुद देखनी पड़ती है।
हाँ, इसे वॉल्स सेल्फ हेल्प सिस्टम कहते हैं ना?
जी हाँ, सेल्फ हेल्प सिस्टम। इस मजबूरी में हर देश के लिए अपनी सुरक्षा और अपना अस्तित्व बचाए रखना सबसे पहली प्राथमिकता बन जाती है, प्रायोरिटी नंबर वन, बाकी सब बाद में।
इसी चक्कर में देश अक्सर एक जैसा पैटर्न दिखाते हैं, जैसे शक्ति संतुलन बनाना, बैलेंस ऑफ पावर।
सही कहा, यानी अगर कोई एक देश बहुत ज्यादा ताकतवर होने लगता है तो दूसरे देश या तो खुद ताकत बढ़ाते हैं,
जिसे आंतरिक संतुलन कहते हैं,
हाँ इंटरनल बैलेंसिंग, या फिर आपस में हाथ मिला लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं, एक्सटर्नल बैलेंसिंग,
ताकि उस ताकतवर देश का दबदबा न बन जाए।
बिल्कुल, तो वॉल्स कहते हैं अगर दुनिया को समझना है तो देशों के अंदर मत झांको ज्यादा, उस सिस्टम को देखो जिसमें वो जी रहे हैं।
अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। वॉल्ट्स ने अपना ये सिद्धांत ऐसे ही हवा में नहीं बनाया था, उन्होंने पहले के सिद्धांतों की आलोचना भी की।
हाँ, उन्होंने कहा कि जो सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को किसी नेता के व्यक्तित्व या किसी देश की अंदरूनी राजनीति से समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे ये कहना कि पहला विश्व युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि जर्मनी का राजा ऐसा था या वहां मिलिट्री हावी थी, वो रिडक्शनिस्ट हैं। रिडक्शनिस्ट मतलब वो बड़ी तस्वीर को छोटे हिस्सों में तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं और असली वजह चूक जाते हैं।
हाँ, उनका कहना था कि अगर युद्ध की वजह देशों के अंदरूनी मामले होते तो फिर अलग अलग तरह के देश, लोकतंत्र, तानाशाही, राजशाही, ये सब इतिहास में एक दूसरे से क्यों लड़ते रहे हैं? जरूर कोई बाहरी वजह है जो सबको प्रभावित करती है।
और वही वजह है सिस्टम की अराजक बनावट, वो एनार्की।
इसी अराजकता और सेल्फ हेल्प की स्थिति से एक और चीज निकलती है, जिसे कहते हैं सुरक्षा दुविधा, सिक्योरिटी डायलेमा। ये क्या है?
ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। सोचिए, एक देश है, वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बढ़ाता है, उसका इरादा पूरी तरह डिफेंस का है,
ठीक है,
लेकिन पड़ोसी देश को तो ये खतरा लग सकता है। वो सोचेगा कि भाई ये शायद हम पे हमले की तैयारी कर रहे हैं।
हाँ, मुमकिन है।
तो वो भी हथियार बढ़ाएगा, फिर पहले वाले को और खतरा महसूस होगा, और इस तरह बिना किसी की बुरी मंशा के भी एक हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है और तनाव बढ़ सकता है।
हाँ, ये तो हम भारत पाकिस्तान या भारत चीन के रिश्तों में इसकी झलक देख सकते हैं शायद।
बिल्कुल, ये क्लासिक सिक्योरिटी डिलेमा है।
और शक्ति संतुलन के बारे में वॉल्स का एक और नुक्ता बड़ा दिलचस्प था। वो कहते थे कि देश अक्सर ताकत के खिलाफ संतुलन बनाते हैं, विचारधारा के खिलाफ नहीं।
हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोकतंत्रों ने कम्युनिस्ट सोवियत संघ के साथ मिलकर नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
हाँ, विचारधाराएं बिल्कुल अलग थीं।
तो बाद में देखी जाएगी।
अब आते हैं वॉल्स के सबसे चर्चित और शायद सबसे विवादास्पद तर्क पर।
हाँ, वो द्विध्रुवीयता वाला, बाइपोलैरिटी।
उनका कहना था कि दुनिया तब ज्यादा स्थिर और शांत रहती है जब सिर्फ दो महाशक्तियां हों,
जैसे शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ।
जी,
ये उस दुनिया से बेहतर है जहाँ कई बड़ी ताकतें हों, यानी बहुध्रुवीय व्यवस्था,
मल्टीपोलैरिटी।
ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, दो दुश्मन महाशक्तियां एक दूसरे पर परमाणु मिसाइलें ताने खड़ी थीं और वो ज्यादा स्थिर था।
हाँ, देखिए वॉल्स का तर्क क्या था। उनका कहना था कि जब सिर्फ दो मुख्य खिलाड़ी होते हैं तो खेल सरल हो जाता है।
सिंप्लिसिटी।
कैसे सरल?
खतरे साफ दिखते हैं, आपको पता है आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है, किसकी क्या ताकत है, ये भी ज्यादातर पता होता है। जिम्मेदारी भी साफ होती है, कोई ये नहीं कह सकता कि अरे वो तीसरा वाला देश निपट लेगा उससे।
अच्छा, मतलब जिम्मेदारी टालने का मौका नहीं मिलता, जिससे वो बक पासिंग कहते हैं।
बिल्कुल, बक पासिंग नहीं हो पाता। इसका उलट जब कई बड़ी ताकतें होती हैं मल्टीपोलर सिस्टम में,
जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध से पहले यूरोप में था।
हाँ, तब स्थिति बहुत जटिल हो जाती है, कौन किसके साथ है, कब गठबंधन बदल जाए पता नहीं चलता, असली खतरा किधर से है ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है।
हाँ, गलत फहमी और गलत अंदाजे का खतरा बढ़ जाता है, देश जिम्मेदारी भी टाल सकते हैं।
सही कहा, इसीलिए वॉल्ट्स मानते थे कि शीत युद्ध के दौरान जो बड़ी लड़ाई नहीं हुई, जिसे कुछ लोग लॉन्ग पीस या लंबी शांति कहते हैं, वो द्विध्रुवीय व्यवस्था की स्थिरता का ही नतीजा था, ज्यादा सतर्कता थी, ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी थी।
ये एक ऐसा विचार है जो आज भी बहुत बहस का मुद्दा है, क्योंकि आज दुनिया फिर से मल्टीपोलर होती दिख रही है। अमेरिका, चीन, रूस, भारत, यूरोप कई सेंटर्स ऑफ पावर बन रहे हैं।
अच्छा, उन्होंने आर्थिक मामलों पर भी कुछ कहा था, है ना, वो जो व्यापार से शांति वाली बात है।
हाँ, उन्होंने उस विचार को चुनौती दी थी जो लोग मानते हैं कि देशों के बीच व्यापार बढ़ने से, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से शांति आती है, वॉल्स उनसे सहमत नहीं थे।
क्यों नहीं थे?
उनका कहना था कि निर्भरता असल में कमजोरी पैदा करती है, वल्नरेबिलिटी। अगर आप किसी जरूरी चीज के लिए, मान लीजिए तेल के लिए, दूसरे देश पर निर्भर हैं, तो वो देश आप पर दबाव डाल सकता है, आपकी पॉलिसी को प्रभावित कर सकता है।
ये बात भी है।
तो अंतर्राष्ट्रीय अराजकता में, जहां हर कोई अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, ये सुरक्षा की चिंताएं अक्सर आर्थिक फायदों पर हावी हो जाती हैं। देश अपनी आजादी और सुरक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं।
तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से क्या बड़े संदेश, क्या की टेकअवेज निकलते हैं?
देखिए, पहला और सबसे अहम, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम की बनावट, वो स्ट्रक्चर ही बादशाह है। देशों के अंदर क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो किस सिस्टम में काम कर रहे हैं। सिस्टम का दबाव उनके बर्ताव को ज्यादा तय करता है।
ठीक है।
दूसरा, अराजकता का मतलब लगातार युद्ध नहीं, पर युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहती है। क्योंकि कोई ग्लोबल अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हर देश को अपनी सुरक्षा की फिक्र करनी पड़ती है, सेल्फ हेल्प।
तीसरा,
इसी से जुड़ी है सुरक्षा दुविधा। एक के रक्षात्मक कदम दूसरे को खतरा लग सकते हैं, जिससे बिना वजह तनाव बढ़ सकता है।
बिल्कुल।
और चौथा, शक्ति संतुलन। कोई सोची समझी नीति हो या ना हो, यह सिस्टम की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, एक तरह का ऑटोमेटिक टेंडेंसी है। देश ताकत के खिलाफ एकजुट होते ही हैं, देर सवेर।
और पांचवा, वो विवादास्पद दावा, दो महाशक्तियों वाली दुनिया बाइपोलैरिटी कई महाशक्तियों वाली दुनिया मल्टीपोलैरिटी से ज्यादा स्थिर होती है, क्योंकि उसमें गलतफहमी और मिसकैलकुलेशन की गुंजाइश कम होती है।
हाँ, आज की दुनिया के लिए ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या हम कम स्थिर दौर की तरफ जा रहे हैं।
वॉल्ट्स की लिखाई में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे उनका कहना था कि संरचना एक बाधा डालने वाली और प्रेरित करने वाली शक्ति है।
ये नियतिवाद नहीं, बल्कि दबाव और संभावना का मामला है।
हाँ, मतलब सिस्टम आपको कुछ चीजें करने से रोकता है, कुछ करने को उकसाता है, पर आखिरी फैसला आपका होता है, लेकिन आपके विकल्प सीमित होते हैं, दायरा तय होता है।
बिल्कुल। एक और मजबूत विचार, अराजकता में सुरक्षा सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब तक अस्तित्व सुरक्षित न हो, देश शांति, लाभ या शक्ति जैसे दूसरे लक्ष्य आसानी से हासिल नहीं कर सकते।
सही बात है, सर्वाइवल पहले, बाकी सब बाद में।
और संतुलन के बारे में वो कहते हैं, सवाल ये नहीं कि संतुलन बनेगा या नहीं, बल्कि ये है कि कैसे बनेगा।
सवाल ये नहीं कि शक्ति संतुलन बहाल होगा या नहीं, बल्कि ये कि इसकी बहाली की कीमत क्या होगी।
मतलब बैलेंस तो होकर रहेगा, सिस्टम उसे वापस लाएगा। सवाल सिर्फ ये है कि ये शांति से होगा या लड़ाई झगड़े और तबाही के बाद।
तो इन सब भारी भरकम विचारों का हमारी रोजमर्रा की दुनिया को समझने में क्या फायदा है? मतलब हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए, जो लोग नीतियां बनाते हैं, उनके लिए तो ये एक तरह की चेतावनी है कि भाई, सिर्फ अच्छे इरादों या आदर्शों के आधार पर विदेश नीति मत बनाओ। दुनिया की शक्ति और सुरक्षा की जो असलियत है, जो कठोर सच्चाइयां हैं, उनको समझो।
हाँ, मतलब मजबूत डिफेंस और समझदारी भरे गठबंधनों की जरूरत हमेशा रहेगी।
बिल्कुल। और हम जैसे आम लोगों या छात्रों के लिए, पहली बात, ये हमें समझने में मदद करता है कि कुछ देशों के बीच दुश्मनी या तनाव इतने लंबे क्यों चलते हैं,
जैसे अमेरिका चीन।
हाँ, या भारत और हमारे पड़ोसी देशों के रिश्ते। ये सिर्फ नेताओं की मर्जी या किसी एक मुद्दे का झगड़ा नहीं होता अक्सर, ये अक्सर सिस्टम के ढांचे, ताकत के बंटवारे और डर का नतीजा होता है।
स्ट्रक्चर का खेल है। क्यों नाटो आज भी मौजूद है, शीत युद्ध खत्म होने के बाद भी?
या क्यों एशिया में नए सुरक्षा समीकरण बन रहे हैं, क्वाड बन रहा है, ऑकस बन रहा है? ये सब शक्ति संतुलन की कोशिशें हैं, वॉल्ट्स के नजरिए से।
तीसरी बात,
ये हमें खबरों में आने वाले बड़े बड़े दावों पर थोड़ा शक करना सिखाता है। जैसे कोई कहे अब इतिहास का अंत हो गया, या अब सिर्फ व्यापार ही सब कुछ है।
हाँ, वो फुकुयामा वाली बात।
हाँ, वॉल्ट्स के हिसाब से जब तक दुनिया अलग अलग संप्रभु देशों में बटी है, तब तक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की संभावना कहीं नहीं आने वाली। ये सिस्टम में ही बसा हुआ है।
और शायद सबसे जरूरी, ये हमें दुनिया को थोड़ा और सहानुभूति से देखना सिखा सकता है। है ना?
कैसे?
वो सुरक्षा दुविधा को समझना कि क्यों कोई देश जो अपनी नजर में सिर्फ रक्षा कर रहा है, वो दूसरे को खतरा लग सकता है, ये हमें अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को समझने में मदद करता है।
हाँ, ये बात तो है। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ बयानों पर न जाएं, बल्कि देशों की क्षमताओं पर, उनकी मजबूरियों पर और उनके सामने मौजूद सिस्टम के दबावों पर भी ध्यान दें।
सही कहा। ये नजरिया थोड़ा निराशावादी लग सकता है, क्योंकि ये बदलाव की उम्मीद कम दिखाता है और सिस्टम के दबाव पर बहुत जोर देता है।
हाँ, पेसिमिस्टिक तो है थोड़ा, लेकिन ये दुनिया की असलियत को समझने का एक ताकतवर औजार जरूर है, एक लेंस है।
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल के नियम काफी हद तक तय हैं और खिलाड़ी यानी देश चाहे कितना भी बदल जाए, खेल का नतीजा अक्सर मिलता जुलता रहता है। ये सिस्टम की ताकत दिखाता है।
वाकई, और मुझे वो द्विध्रुवीयता वाला तर्क आज भी बहुत सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई शीत युद्ध की वो तनाव भरी स्थिरता जिसमें दुनिया न्यूक्लियर वॉर के कगार पर थी कई बार, क्या वो आज की इस अनिश्चित कई ताकतों वाली दुनिया से बेहतर थी? ये किताब हमें याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निरंतरता कंटिन्यूटी अक्सर बदलाव से ज्यादा भारी पड़ती है।
और हम श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं आज, जब दुनिया साफ तौर पर बहुध्रुवीय हो रही है, क्या केनेथ वॉल्ट्स का सिद्धांत हमें आने वाले बड़े टकरावों की चेतावनी दे रहा है, या फिर आज की आपस में जुड़ी दुनिया, नई टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद जैसे गैर सरकारी खतरे, क्या ये सब इस पुराने संरचनात्मक तर्क को बदल देंगे?
ये $1 मिलियन सवाल है, इस पर जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।